आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हाल में उजागर हुए चाइल्ड केयर व्यवस्था में यौन शोषण के मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों माता पिता के काम करने वाली गृहस्थियां अमूमन चाइल्ड केयर पर निर्भर रहती हैं। ऐसे में इस मामले ने माता पिताओं में नई चिंताओं को जन्म दिया है। आमना नसीर एक 3 साल के बच्चे की माँ है, वे कहती हैं,
मेरे ख्याल से सबसे पहली परेशानी तो किसी भी पेरेंट को यही होगी कि एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है बहुत ब्लेटेंट। वालिदैन अपने बच्चों को ऐसी इंस्टीट्यूशंस में छोड़कर जाते हैं ताकि वो काम कर सकें या पढ़ाई कर सकें या सिर्फ थोड़ा सा घर में अकेले टाइम गुजार सकें, और ये जो इंसान है जिन्होंने ये किया है वो कोई रैंडमली इस रोल में नहीं है, वो काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं। खौफनाक सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि दिस इज समबडी जो कि बहुत ही ईजिली मूव अराउंड कर रहे थे विद इन दिस सिस्टम, और उनके पास वैलिड बैकग्राउंड चेक्स भी थे। आई थिंक कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है सिस्टम में वो शेक हो जाता है एज पेरेंट्स, क्योंकि हम उस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, और सिस्टेमिक गैप्स भी बहुत सामने आए हैं कि कैसे एक इंसान एक नहीं दो नहीं तीन नहीं इतने ज़्यादा बच्चों के साथ इस तरह का जो है सलूक किया है इतने ओवर द ईयर्स। तो देर आर ऑब्वियसली सिस्टेमिक गैप्स भी हैं कि किस तरह से उसके रिकॉर्ड्स में कभी ये चीज शो नहीं हुई।
आमना के अनुसार कई ऐसे समाधान हैं जिनकी अब व्यवस्था को तुरंत आवश्यकता है।
ये इनिशियल चेक्स के बियॉन्ड हम देखने की जरूरत है कि आपने एक वर्किंग विद द चिल्ड्रन हो गया, आपने एक इनिशियल इंटरव्यू ले लिया, स्क्रीन कर लिया किसी को, लेकिन उसके बाद थरो चेक्स करने चाहिए आफ्टर सर्टन पीरियड्स ताकि ये कॉन्फिडेंस बहाल रहे कि दिस पर्सन इज समबडी जो कि सेफ है बच्चों के साथ काम करने के लिए। और फिर आई थिंक कुछ ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये भी हो सकते हैं कि एक बच्चा कभी भी एक सिंगल अडल्ट के साथ अकेला ना पाया जाए, जितने भी इस तरह की चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चरली वो इस तरह से डिज़ाइन की जाएँ कि वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स ना हो जहाँ पे इस तरह की हरकतें हो सकें, क्लियर विजिबिलिटी रहे हर टाइम पे, CCTV इंस्टॉल किए जाएँ ताकि क्लियर पॉलिसीज़ हों, पेरेंटल कंसेंट हो, तरह की जगहों पर कॉन्स्टेंटली एक निगरानी होनी चाहिए। इन जनरल पॉपुलेशंस को सेंसिटाइज करना चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, इवन छोटे बच्चों को ये सेंसिटिविटी सिखाना, उनको ये एजुकेशन देना कि आई मीन ऑफ कोर्स जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं सम ऑफ देम आर नॉट इवन वर्बल, वो बता भी नहीं सकते, लेकिन एक इस चीज़ का ये भी पहलू है कि हम बहुत छोटी एज से बच्चों को ये बात बताना शुरू कर दें कि किस तरह अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट टच क्या है।
बच्चों से बातचीत करना, उनको समझाना और उनको अपनी बॉडी सेफ्टी के प्रति जागृत करना भी एक बड़ी आवश्यक प्रक्रिया है। फैमिली एंड चाइल्ड थेरेपिस्ट गोपल सिन्हा SBS हिंदी से बातचीत करते हुए इस पर आगे प्रकाश डालती हैं। शुरू करते हैं डॉक्टर सिन्हा और समझते हैं कि बच्चों को जो एक गुड टच और बैड टच का संज्ञान है, जो समझ है, वो किस तरह से दिया जा सकता है, खास करके अगर बच्चे 8 साल से छोटे हों तो।
वैशाली, मैं खुद एक 8 साल के बच्चे की मॉम हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से मेरे पास भी जब वो ग्रो कर रहा था छोटे से लेकर अभी तक 8 साल का हो गया है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी मैंने देखे हैं और उसको किस तरह से समझाना है। आई थिंक मेरे लिए सबसे हेल्पफुल अप्रोच थी कि उसका फ्रेंड बन के मैं कुछ भी उससे शेयर करूं या उससे पूछूं। मुझे लगता है बैड टच, गुड टच या फिजिकल अब्यूज जैसी चीजें बहुत ही संवेदनशील, महत्वपूर्ण है बहुत सावधानी के साथ केयरफुली बात करने के लिए, क्योंकि 5 साल से 12 साल की उम्र बहुत ही सेंसिटिव होती है अपने आप में ही। बहुत सारे बच्चे आए हैं जिन जो इस टॉपिक को लेकर जिनके पेरेंट्स खुद बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक काउंसलर का सहारा लेकर उनसे बात करने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि अगर वो खुद इस चीज को अप्रोच करते तो ज्यादा अच्छे से समझा भी पाते, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस तो है लेकिन कहीं ना कहीं हेसिटेशन है अपने खुद के बच्चे के साथ बात करने के लिए। व्हेन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड टच और बैड टच, मुझे लगता है बहुत ही आसान शब्दों में एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यानी भाषा का प्रयोग करके हम बच्चों को समझा सकते हैं। कई बारी हम उनको पिक्स भी दिखा सकते हैं, कोई इमेजेस दिखा सकते हैं जिससे कि उनके लिए आसान हो जाए समझना। और सबसे अच्छी उम्र होती है 3 से 4 साल तक के बच्चों के लिए, जहाँ पे वो बॉडी पार्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं और माँ बाप के लिए भी आसान हो जाता है। जैसे कि जब वो एक एग्जाम्पल देती हूँ, नहा रहे हो या फिर बच्चा कपड़े बदल रहा हो, क्या उस टाइप में हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करके उनको इन चीजों को एग्जाम्पल देके हम समझा सकते हैं।
तो डॉक्टर सिन्हा, भारतीय परिवारों में खासकर जो हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स में बात करने के लिए हेजिटेशन होती है, झिझक होती है, और ये कहीं ना कहीं पूरे परिवेश से आता है जहां पर हम सेक्स या बॉडी पार्ट्स जैसी जो विषय हैं उन पर बात करने में कतराते हैं। तो किस
जी
तरीके से इस बात को किया जा सकता है रोजमर्रा की जिंदगी में ताकि ये बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए और उन्हें याद रह जाए?
मुझे लगता है एक पॉजिटिव और एक्सेप्टेबल शब्दों में शुरू करें बातों को, ज्यादा हेल्दी और रिस्पेक्टफुल होता है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि वैल्यूज विच आर डीपली रूटेड इन अवर कल्चर, राइट? सो स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशंस विदाउट लेबलिंग बॉडी पार्ट्स एज बैड और शेमफुल, दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। क्योंकि जहां पे हम लेबल कर देते हैं वहां से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और लेबल करने से बच्चा बंद हो सकता है, मतलब वो खुल के बात नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी शेमफुल और बैड जैसे शब्द वहां पे जुड़ गए हैं। इसीलिए माता पिता को बहुत ही सिंपल और साफ शब्दों में विदाउट लेबलिंग बॉडी पार्ट्स, आई गेस जैसे कि बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उसको सामान्य तरीके से यूज करके लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर हम आपसे समझना चाहें कि एक बच्चे में जो शायद किसी तरह से अब्यूज हो रहा है या उसके साथ किसी तरह का शोषण हो रहा है, किस तरीके का ऐसा व्यवहार वो प्रदर्शित करता है जिससे माता पिता या उसके केयर गिवर्स या उसके टीचर्स ये समझ सकते हैं कि इस बच्चे को कुछ समस्या है या उसके ऊपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है?
ऐसे काफी सारे साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। माँ बाप को एज अ पेरेंट्स बच्चे के व्यवहार में होने वाले किसी भी अचानक बदलाव या चेंज को हम लोगों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, खासकर तब जब हमको कोई रीजन ना पता हो या समझ में आए। साइंस हो सकते हैं, जैसे कोई बच्चा अचानक से चुप हो जाए, बहुत बात करता है और अचानक से कभी चुप हो जाए, डर लगने लगे उसे, किसी के बारे में बात करने से डरे, तो वो एक साइन होता है। उसको नींद ना आए, ज्यादा ओवर थिंक करे, अपनी ही दुनिया में रहे, स्पेशली कुछ लोगों से बचे, तब ये एक साइन होता है। एग्रेसिवली रिस्पॉन्सेस देने लगे, खाने की आदतों में बदलाव हो सकता है, या फिर ज्यादा छुपाने की कोशिश करने लगे। शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई ब्रूज हो, कोई मार्क हो बॉडी पे, या फिर किसी तरह का पेन हो, या फिर बहुत सारा गिल्ट हो सकता है। इसीलिए बात बहुत शुरू में ही कर लेनी चाहिए, बच्चे बड़े होने तक का इंतजार ना करें, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो शेम और हेसिटेशन भी बड़े हो जाते हैं।
तो डॉक्टर सिन्हा, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि पेरेंट्स और केयर गिवर्स, खासकर जिस तरीके की रिपोर्ट्स हम लोग आजकल सुन रहे हैं, केयर गिवर्स और पेरेंट्स किस तरह से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्होंने बच्चे के लिए एक सुरक्षित परिवेश बनाया है जिसमें अगर किसी बच्चे को इस तरीके की कोई समस्या है तो वो बिना डरे खुल करके बात कर सकता है?
जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि एज अ फ्रेंड अप्रोच अगर यूज करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। सबसे जरूरी बात कि एक निश्चित समय हो उस बात करने के लिए, कि ये समय मैंने डिसाइड किया है इस बात को करने के लिए, इस टॉपिक को यूज करने के लिए, बच्चे से बात करने के लिए, उस और एक ही बार में टॉपिक को खत्म करने के लिए हमें एम करना चाहिए। बार बार ब्रेक करेंगे तो बच्चा पहले पहले वाली बात भूल सकता है और दूसरे कॉन्वर्सेशन समझ नहीं सकता है, तो हमको एक ही बार में ये जरूरी है कि हम टॉपिक को खत्म करें। और फिर से आसान शब्दों में बॉडी पार्ट्स विदाउट शेमिंग, विदाउट ब्लेमिंग हम उनको अपनी बात पहुंचा सकें कि क्या है।
किस तरह से स्कूल्स या फिर सरकारें एक रोल प्ले कर सकती हैं, अपनी भूमिका निभा सकती हैं बच्चों को ये समझाने में कि बॉडी सेफ्टी क्या है और बॉडी सेफ्टी किस तरह से खुद की बनाई जा सकती है, और अगर उन्हें उसमें कुछ तकलीफ लगती है तो वे उस बारे में बात कर सकते हैं।
स्कूल्स में भी मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स के साथ है बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, लगातार रेगुलर कांस्टेंट कोशिश करते रहना चाहिए। एज एप्रोप्रिएट बॉडी सेफ्टी प्रोग्राम्स हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पे मेरे ख्याल से पेरेंट्स से पहले अगर ये स्कूल्स में ही सिखाना शुरू कर दें तो पेरेंट्स के लिए भी आसान हो जाता है, बच्चे बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, टॉपिक नोन होता है उनके लिए बॉडी पार्ट्स को जानने का या फिर पेरेंट्स से शेयर करने का। बहुत अच्छा हो सकता है अगर पेरेंट्स रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों से बातें करते हैं, जैसे कि रोजमर्रा में स्कूल में क्या हुआ, डेली डेली बेसिस पे कि स्कूल में आज क्या हुआ, क्या पढ़ाया गया, बच्चा फिर इजीली कंफर्टेबली उनसे पेरेंट्स से ये भी बात कर सकता है। ट्रेन टीचर्स और स्टाफ का होना भी जरूरी होता है, गलत व्यवहार के संकेत को जो पहचान सके इजीली, और टीचर्स और स्टाफ रिएक्शंस भी उसी सही रिएक्शंस, एप्रोप्रिएट टाइमली रिएक्शंस दे सकें, रिस्पॉन्सेस दे सकें। एक बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत जल्दी ये चीज़ें घर कर जाती हैं, कौन उनके साथ है कौन नहीं है, किसने उनका साथ दिया किसने नहीं दिया, और यहीं पे ट्रस्टवर्दी और सेफ्टी इन्वायरमेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ से शुरू होता है। सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बच्चे से रेगुलर बात करते रहना, जो भी बच्चे हैं स्कूल के अंदर उनसे फ्रेंडली तरीके से बात करना, एज आई सेड कि पेरेंट्स और यहाँ पे टीचर्स की अप्रोच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता जब हम बच्चों से बात करते हैं, स्पेशली 5 5 साल से थोड़े से बड़े या फिर जो 12 साल से अंदर के बच्चों से अगर इस टॉपिक पे रेगुलरली हम बात करें तो अच्छा होता है। और मैंडेटरी रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग अगर होती है तो बच्चे के लिए भी आसान हो जाता है, उसको पता होता है कि हम कहाँ जाके किससे बात कर सकते हैं और किसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें बहुत खुल के स्कूल में बच्चे को बतानी चाहिए, और यही चीजें चाइल्ड केयर में होती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड केयर एंड स्कूल, स्कूल में हमारे पास डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट एज के बच्चे होते हैं, चाइल्ड केयर में भी ऐसा ही होता है लेकिन बहुत छोटे बच्चे होते हैं जहाँ पे वो अपनी बातों को खुल के नहीं कह सकते, कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो समझते नहीं है, बॉडी पार्ट्स को भी नहीं समझते, उस केस में आई थिंक सीसीटीवी कैमराज कंस्टॉलेशन या फिर ट्रेंड बैकग्राउंड वेरीफाइड स्टाफ होना चाहिए, पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन होना चाहिए जहाँ पे बच्चे बात कर सकते हैं, और सेफ एनवायरनमेंट अगेन जो कि बहुत जरूरी है।
जी, तो यहीं से मेरा दूसरा सवाल निकल के आ रहा है डॉक्टर सिन्हा, और वो ये है कि जब माँ बाप एक चाइल्ड केयर का चुनाव करें तो किन चीज़ों का
जी,
ख्याल रखना चाहिए?
मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है कि ट्रेन्ड स्टाफ होना बहुत जरूरी है जिनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो चुका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिलेक्शन जब होता है किसी चीज़ का, स्कूल का या फिर चाइल्ड केयर सेंटर का, तो माँ बाप बहुत आसानी से बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं, जब वो अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो उनको सेंस हो सकता है, आभास हो सकता है कि कौन सा पर्सन किस तरह का है और कितना फ्रेंडली है या फिर फ्रेंडली नहीं है। तो बिहेवियर्स को नोटिस करने के लिए जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है माँ बाप के लिए भी कि हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करें हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर्स को लेकर, और यही चीज़ अप्लाई होती है चाइल्ड केयर सेंटर्स में भी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट सेफ एनवायरनमेंट के तहत बहुत कुछ आता है, कैमराज आते हैं या फिर इंटरैक्शंस आते हैं या फिर हम किस तरह से सेफ्टी को लेते हैं, प्रोसीजर्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, ये चीज़ें रेगुलर रिव्यू होती हैं या नहीं होती हैं।
और
जी
आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा डॉक्टर सिन्हा कि ऑस्ट्रेलिया में नए परिवार जो आ रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं जो एक चाइल्ड केयर सेंटर में खुद को बच्चों को डाल रहे हैं या ऐसी सेवाएं ले रहे हैं, उनके लिए अच्छे रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, उन्हें कहाँ पर ये पता चल सकता है कि क्या सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध हैं और क्या नियम कानून है?
जी, कुछ चीज़ों का नाम मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो मैं अपने क्लिनिक पे रेगुलरली यूज़ भी करती हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और परिवारों के लिए देखिए, सिर्फ आई वुड लाइक टू से कि उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ बच्चे ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की सुरक्षा को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। बच्चा कुछ बताता है या माता पिता को कोई भी डाउट होता है, सस्पिशियस है पेरेंट्स, तो कुछ कॉन्फिडेंशियल फ्री कल्चरली सेंसिटिव सीरियस सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इनटेक, एक विक्टोरिया में है 1300-664-9777। अगर बच्चा किसी डेंजर में है तो हम इमरजेंसी सर्विसेज कॉल कर सकते हैं 000। किड्स हेल्पलाइन काउंसलिंग सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है, जिसमें 5 साल से 25 साल के एज के लिए अप्रोप्रिएट है ये सर्विसेज, और उनका नंबर है 1-800-551-800, फ्री कॉल। नेशनल सेक्सुअल असोल्ट डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस काउंसलिंग सर्विसेज 1-800-RESPECT, और मल्टीकल्चरल एंड माइग्रेंट सपोर्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सेटलमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल। सो ये कुछ सर्विसेज हैं जहाँ पे आप मदद के लिए पूछ सकते हैं। बच्चे को अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हेसिटेट ना करें, इजीली रीच आउट करें। ये सर्विसेज बहुत ही हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है।
डॉक्टर सिन्हा, आज आपने SBS को इतना समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, और SBS हिंदी पर हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।
इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है। SBS इससे ना ही सहमत है ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। SBS हिंदी से आपके लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया विशाली चैन ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।